ये है पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य के स्वाध्याय और सत्संग पर दिए गए विचारों की एक संक्षिप्त जानकारी। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे विचार और हमारे काम काफी हद तक हमारे आसपास के माहौल और संगति से ही तय होते हैं और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो पहली बात, मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इंसान ना एक कोरे कागज या फिर गीली मिट्टी जैसा है। वो जिन लोगों के बीच रहता है, जिन विचारों से घिरा होता है, बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाता है। अच्छी संगति यानी सत्संग हमें ऊपर उठाती है, जबकि बुरी संगति जाहिर है हमें नीचे गिरा सकती है। हमारी आदतें हमारी संगति का ही नतीजा होती हैं। दूसरी बात, स्वाध्याय घर बैठे सत्संग करने जैसा है। जब अच्छे लोगों का साथ न मिल पाए तो अच्छी पुस्तकें पढ़ना भी सत्संग का ही लाभ देता है। महापुरुषों के जीवन और उनके विचार हमें सही दिशा दिखाते हैं। देखिए, जैसे शरीर को रोज सफाई की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही मन पर जमे बुरे विचारों को हटाने के लिए रोज स्वाध्याय बहुत जरूरी है। और आखिरी में, स्वाध्याय का असली मतलब है आत्मनिरीक्षण। मतलब सिर्फ पढ़ लेना ही स्वाध्याय नहीं है, बल्कि अपने चरित्र का रोज मूल्यांकन करना असली स्वाध्याय है। ये जांचना कि हमारे काम पशुओं जैसे हैं या महापुरुषों जैसे, और अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करना। आत्मनिरीक्षण से ही आत्मसुधार का रास्ता खुलता है। संक्षेप में कहें तो खुद को बेहतर बनाने के लिए अच्छी संगति और निरंतर आत्मनिरीक्षण ही सबसे कारगर उपाय हैं।
तो आज हम पूज्य गुरुदेव के एक बहुत ही गहरे विचार पर बात करने वाले हैं, स्वाध्याय और सत्संग। मतलब ये शब्द सुनने में तो बहुत पुराने लगते हैं ना, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये वाकई काम करते हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पूज्य गुरुदेव की एक बात हमेशा मतलब बहुत अच्छी लगती है। वो कहते थे कि सत्संग और स्वाध्याय जो हैं वो मन की रोजाना की सफाई हैं, जैसे हम घर साफ करते हैं, नहाते हैं।
बिल्कुल, कितनी कितनी सरल सी बात है, लेकिन कितनी गहरी।
वही तो, हम मन के बारे में तो सोचते ही नहीं है, बस शरीर और घर की सफाई में लगे रहते हैं।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने जो सत्संग की परिभाषा दी है वो बहुत कमाल की है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ साधु संतों के प्रवचन सुनना नहीं है। नहीं, सत्संग का मतलब है हमारा पूरा माहौल, हमारे दोस्त, हम कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं,
हमारे विचार भी।
हमारे विचार भी, और यहाँ तक कि हमारी परिस्थितियाँ भी।
सब कुछ सत्संग है।
सब कुछ सत्संग है। वो जो कहते हैं ना कि मनुष्य अपने माहौल की उपज है, ये बिल्कुल वही बात है।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम 24 घंटे सत्संग में हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।
हाँ, एक तरह से तो यही बात है।
तो फिर इसे कंट्रोल कैसे करें? मतलब अगर कोई किसी नेगेटिव माहौल में फंसा है तो वो क्या करे?
ये सवाल तो बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव भी ये मानते थे कि बाहरी माहौल पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन हमारे अंदर के माहौल पर हो सकता है।
अच्छा।
और यहीं पर स्वाध्याय का रोल आता है। लेकिन सत्संग पर एक बात और, सिर्फ अच्छी संगत में बैठना ही काफी नहीं होता।
मतलब
हमारा मन भी तो उसे लेने के लिए तैयार होना चाहिए। सत्संग एक बीज की तरह है, जमीन यानी हमारा मन, वो भी तो उपजाऊ होनी चाहिए ना।
ये तो बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब तैयारी अंदर से ही शुरू होती है। अरे हाँ, वो विश्वामित्र और वशिष्ठ वाली कहानी, वो तो कमाल है।
हाँ, वो कहानी सत्संग की शक्ति को मतलब अद्भुत तरीके से दिखाती है। सोचिए, ऋषि विश्वामित्र अपनी 1000 साल की तपस्या का फल,
1000 साल,
हाँ 1000 साल की तपस्या का फल ऋषि वशिष्ठ के सिर्फ एक पल के सत्संग के लिए बदलने को तैयार हो जाते हैं।
और वो सत्संग वाला पड़ला भारी निकलता है।
हाँ,
है ना?
बिल्कुल, एक क्षण का सत्संग 1000 साल की तपस्या पर भारी पड़ गया। इससे पता चलता है कि सही दिशा कितनी जरूरी है। सत्संग वही दिशा देता है।
यकीन करना मुश्किल है। तो ठीक है, सत्संग हमें बाहर से दिशा दिखाता है, लेकिन स्वाध्याय वो हमें अंदर से कैसे बदलता है?
तो सत्संग अगर दिशा है, तो स्वाध्याय है उस दिशा में चलने की अंदर की ताकत।
पूज्य गुरुदेव इसे घर बैठे सत्संग भी कहते थे शायद।
बिल्कुल सही। महापुरुषों के विचारों से जुड़ने का ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें एक शर्त है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। गुरुदेव मनन पर बहुत जोर देते थे, मतलब जो पढ़ा उस पर गहराई से सोचना।
नहीं तो वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगा, ज्ञान नहीं बनेगा। लेकिन एक खतरा भी तो है इसमें।
क्या?
कि अगर हम सिर्फ वही पढ़ें जो हमें पहले से पसंद है, तो वो हमारे पुराने विचारों को और पक्का ही करेगा ना।
बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी आपने। ये स्वाध्याय की सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि स्वाध्याय एक आईने की तरह होना चाहिए जिसमें हम खुद को सुधारने के लिए देखें, न कि अपनी तारीफ सुनने के लिए।
तो मतलब सार ये निकला कि ये दोनों एक दूसरे के बिना दो रहे हैं।
बिल्कुल, सत्संग बाहर से प्रेरणा और सही माहौल देता है
और स्वाध्याय उस प्रेरणा को समझने, उसे अपनाने और उस पर टिके रहने की अंदर से हिम्मत और समझ देता है।
एकदम सही कहा, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
तो चलिए आज की बात को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हम उन लोगों और विचारों का आईना है जिनसे हम घिरे हैं। आज के जमाने में हमारा सत्संग सिर्फ लोग या पुस्तकें तो है नहीं, हमारा सोशल मीडिया फीड, जो हम वीडियो देखते हैं, जो पॉडकास्ट सुनते हैं, ये सब भी तो सत्संग ही है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा ये डिजिटल सत्संग हमें कल क्या बनाने की तैयारी कर रहा है।
नमस्कार, और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब मतलब अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों में फंस से गए हैं, कि हमारा माहौल ही हमें बना रहा है या शायद बिगाड़ रहा है।
बिल्कुल।
तो आज हम पूज्य गुरुदेव की शिक्षाओं से प्रेरित एक ऐसे दो भाग वाले टूलकिट की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें इस फंदे से बाहर निकलने में मदद कर सकता है।
ये बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है असल में। इसमें एक टूल हमारी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए है जिसे सत्संग कहते हैं,
और दूसरा
टूल हमारी भीतरी दुनिया को मजबूत बनाने के लिए है जिसे स्वाध्याय कहते हैं।
बिल्कुल। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हजारों साल पुराने विचार आज की हमारी तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में
काम करते भी हैं?
क्या ये सचमुच हमारी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल वापस ला सकते हैं? हाँ, यही सवाल है। चलिए पता लगाते हैं।
ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, एक तरह से एक प्रक्रिया है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये मन की सफाई की एक नित्य प्रक्रिया है।
अच्छा,
ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर और घर को रोज साफ करते हैं, ये एक तरह की मेंटल हाइजीन है, यूं समझिए।
मेंटल हाइजीन, ये अच्छा शब्द है। तो फिर पहले टूल से शुरू करते हैं जो हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ा है।
हाँ, सत्संग से।
स्रोतों में विद्वान बेकिन का एक बड़ा मशहूर कथन है, मनुष्य कोरे कागज के समान है। यानी हम जो कुछ भी हैं वो हमारा माहौल हम पर लिखता है। लेकिन क्या ये बात मतलब आज भी पूरी तरह सच है?
क्या मतलब?
आजकल तो जेनेटिक्स और हमारी पैदाइशी पर्सनैलिटी की भी बहुत बात होती है। क्या संगति का असर इतना ज्यादा हो सकता है कि वो हमारी बायोलॉजी को भी ओवरराइड कर दे?
ये बहुत ही सही सवाल है। देखिए, बेशक हमारी एक जैविक बनावट होती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव के अनुसार उस बनावट पर कौन सी इमारत खड़ी होगी, ये पूरी तरह हमारी संगति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
अच्छा,
ये उदाहरण हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतने घुले मिले हैं कि हम उन पर ध्यान भी नहीं देते।
जैसे कि?
कोई उदाहरण दे सकते हैं?
बिल्कुल।
सोचिए, एक सच्चा जैनी जीव दया को अपना सबसे बड़ा धर्म मानता है।
हाँ, वो तो एक चींटी को भी नहीं मारते।
बिल्कुल। और वहीं एक सच्चा मुसलमान ईश्वर के नाम पर कुर्बानी को एक पवित्र आज्ञा का पालन समझता है।
सही बात है।
अगर आप दोनों के मन की जांच करें तो दोनों पूरी ईमानदारी से खुद को धर्म के रास्ते पर मानते हैं। उनका सच उनकी संगति ने गढ़ा है।
और ये सिर्फ धर्म की बात तो नहीं है, ये हमारी आदतों में भी दिखता है ना?
बिल्कुल। जैसे यूरोपीय लोग मलत्याग के बाद कागज से शुद्धि करते हैं और हिंदू जल से।
हाँ, और दोनों एक दूसरे की इस प्रथा को अजीब, यहाँ तक कि घृणित भी मानते हैं।
यही तो, एक गोबर से लीपे हुए स्थान को पवित्र मानता है, दूसरा उसे पशु की विष्ठा मानकर गंदा समझता है।
तो इन सभी उदाहरणों में एक ही बात कॉमन है
कि हमारा दिमाग सही और गलत को तर्क से नहीं बल्कि आदत और माहौल से सीखता है। जिसे हम धर्म या संस्कृति कहते हैं वो असल में हमारे दिमाग की एक गहरी प्रोग्रामिंग है।
दिमाग की गहरी प्रोग्रामिंग, ये सोचने में भी अजीब लगता है। इसका सबसे बड़ा सबूत शायद अफ्रीका के जंगल की वो घटना है जो स्रोतों में दी गई है।
वो भेड़िये वाली घटना?
हाँ, वो तो सच में अविश्वसनीय है। मतलब एक भेड़िया इंसान के दो बच्चों को उठा कर ले गया, लेकिन उन्हें खाया नहीं बल्कि पाल लिया। और जब वो बच्चे कई सालों बाद मिले
तो वो पूरी तरह भेड़िये बन चुके थे।
हाँ, वो उन्हीं की तरह गुर्राते थे, चार पैरों पर चलते थे और कच्चा मांस खाते थे।
उन्होंने इंसानी भाषा या भावनाएं कभी सीखी ही नहीं, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर पूरी तरह उनके माहौल ने इंस्टॉल किया था।
तो इससे साफ है कि मनुष्य सचमुच एक गीली मिट्टी की तरह है जिसे परिस्थितियां कोई भी आकार दे सकती हैं।
बिल्कुल।
ये तो डरावना भी है, ये सोचना कि जिसे हम मैं कहते हैं उसका कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे आसपास के माहौल का एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर हमारा माहौल इतना ही शक्तिशाली है तो हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? मेरे ख्याल से यहीं पर सत्संग की भूमिका आती है।
बिल्कुल, सत्संग का मतलब ही है सत, यानी अच्छे की संगति करना।
अच्छा,
हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का जो प्राचीन महत्व था वो इसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित था।
उसका असली मकसद किसी मूर्ति के दर्शन करना नहीं था?
नहीं, असली मकसद था उन जगहों पर जाना जहाँ ब्रह्मर्षि और ज्ञानी लोग रहते थे, ताकि उनके सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र और ज्ञान का लाभ मिल सके।
इसकी शक्ति को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उसे सुनकर तो लगता है कि सत्संग का असर किसी जादू जैसा है।
हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। तो विश्वामित्र को लगा कि ये तो मेरा अपमान है।
हाँ, मतलब एक तरफ हजार साल की कठोर तपस्या
और दूसरी तरफ बस एक पल का सत्संग। उन्होंने सोचा ये कैसा मजाक है। लेकिन जब फैसला कराने के लिए विशेष नाग के पास गए तो कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया।
क्या हुआ वहां पे?
शेषनाग ने कहा कि जो अपनी वस्तु के बल से पृथ्वी का बोझ उठा ले वही श्रेष्ठ है।
ठीक है।
विश्वामित्र ने अपनी हजार साल की तपस्या का पूरा बल लगा दिया पर पृथ्वी को हिला भी नहीं सके।
लेकिन वशिष्ठ ने?
वशिष्ठ ने जैसे ही अपने एक क्षण के सत्संग का फल अर्पित किया, पृथ्वी ऊपर उठ गई।
वाओ, तो इस कहानी का असल मतलब ये नहीं है कि सत्संग कोई जादुई शक्ति है।
नहीं,
इसका मतलब ये है कि एक पल की सही संगति, एक सही विचार आपकी हजारों सालों की मेहनत को सही दिशा दे सकता है। ये तो एफिशिएंसी की बात हुई।
आपने इसे बिल्कुल सही समझा। आपकी मेहनत बर्बाद न हो इसके लिए सही लोगों के बीच रहना जरूरी है। ये ऊर्जा को सही दिशा देने का विज्ञान है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है जो हर कोई सोचता है
कि आज के समय में हम ऐसी ज्ञानी और महात्मा कहाँ ढूंढे? हम सब तो अपने नौकरी और परिवार में व्यस्त हैं।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव इसका बहुत ही सुंदर समाधान देते हैं।
क्या?
वो कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा लिखी गई उत्तम पुस्तकें पढ़ना भी घर बैठे सत्संग करने जैसा है।
अच्छा।
जब आप किसी महान विचारक की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप सीधे उनके विचारों के संपर्क में आते हैं। ये एक तरह से सत्संग ऑन डिमांड है।
ये बहुत अच्छी बात कही। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है,
वैसे ही अच्छे विचार एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकते हैं।
ठीक है, तो सत्संग यानी सही माहौल और संगति का असर तो समझ आ गया। ये हमारा बाहरी टूल है।
हाँ,
लेकिन हम हमेशा अपने माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार हम गलत लोगों या नकारात्मक परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तब क्या करें? मेरे ख्याल से यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ स्वाध्याय काम आता है ना? ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है।
बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। अगर सत्संग बाहर से सुरक्षा कवच बनाना है तो स्वाध्याय अंदर से फौलाद बनना है।
स्वाध्याय शब्द का अर्थ ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ना लिखना समझते हैं।
हाँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव इसके दो गहरे अर्थ बताते हैं।
क्या है वो?
पहला है स्वस्य आत्मनो अध्ययनम, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन।
अच्छा, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन या आत्मनिरीक्षण।
बिल्कुल, हर पल ये देखना कि मेरे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं। और दूसरा है स्वयं अध्ययनम,
यानी अपने आप अध्ययन करना, जिसे मनन या चिंतन कहा जा सकता है।
हाँ, तो ये एक तरह से माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग का कॉम्बिनेशन हुआ।
मतलब आप जो भी जानकारी ले रहे हैं उसे बस मान नहीं लेना, बल्कि उस पर गहराई से सोचना।
बिल्कुल, और ये एक तपस्या है, एक ऐसा तप जो आत्मा पर पड़े दुनिया के मैल को हटाकर उसे चमका देता है। शास्त्रों में इसके महत्व के बारे में बहुत कठोर बात कही गई है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जिस दिन स्वाध्याय ना किया जाए उस दिन मनुष्य की स्थिति शूद्र जैसी हो जाती है।
ये तो बहुत बहुत कठोर बात है।
हाँ,
आज के समय में इस शूद्र शब्द के बहुत अलग और संवेदनशील मायने हैं।
हाँ है।
क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञान और आत्ममंथन के बिना हमारा मन बिना किसी दिशा के हो जाता है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है?
यह एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक व्याख्या है। बिल्कुल यही भाव है। इसका अर्थ है कि बिना आत्मनिरीक्षण के हमारा जीवन दिशाहीन हो जाता है।
हम बस परिस्थितियों के गुलाम बनकर रह जाते हैं।
हाँ, इसीलिए स्वाध्याय के पुण्य की तुलना किसी भी भौतिक दान से नहीं की जा सकती। कहा गया है कि धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी को दान करने से जितना पुण्य मिलता है
उससे तीन गुना पुण्य रोज स्वाध्याय करने वाले को मिलता है।
ये तो कमाल है,
है ना?
यह बात आज की शिक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। स्कूल और कॉलेज हमें जानकारी देते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो स्वाध्याय से ही आता है।
हाँ, जो ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए रटा जाता है पूज्य गुरुदेव उसे पिंजरे में बंद तोते की तरह कहते हैं,
जो मौका मिलते ही उड़ जाता है।
बिल्कुल।
स्वाध्यायी व्यक्ति में कुछ खास गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं, जैसे दृढ़ संकल्प, अकेलेपन में भी खुश रहने की क्षमता
और दुनिया की भलाई की भावना।
हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एकलव्य।
अच्छा, एकलव्य का उदाहरण कैसे?
जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया तो वह निराश होकर नहीं बैठे। उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाई और स्वाध्याय के बल पर अभ्यास किया।
और नतीजा?
वे अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बनकर उभरे।
बिल्कुल, ये सेल्फ ड्रिवन लर्निंग की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है।
और एक आधुनिक उदाहरण सर आइजैक न्यूटन का भी है।
सेब को पेड़ से गिरते हुए तो सदियों से सबने देखा था।
हाँ, वो तो एक आम घटना थी,
पर केवल न्यूटन ने उस पर अपनी निरीक्षण शक्ति से मनन किया, चिंतन किया। ये निरीक्षण और चिंतन भी तो स्वाध्याय का ही एक रूप है।
सही बात, और इसी स्वाध्याय से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर डाली।
तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही शक्तिशाली दो भाग वाला जीवन जीने का तरीका है। पहला, हम सब उस कोरे कागज की तरह हैं जिस पर परिस्थितियां अपनी कहानी लिखती हैं, इसलिए हमें सक्रिय रूप से अच्छी संगति मतलब सत्संग और अच्छी पुस्तकें खोजनी चाहिए,
ताकि हमारे कागज पर एक सुंदर कहानी लिखी जा सके।
और दूसरा, सच्ची प्रगति और ज्ञान बाहरी शिक्षा से नहीं बल्कि आत्म अध्ययन यानी स्वाध्याय से ही संभव है।
बिल्कुल, जब हम खुद मेहनत करके, चिंतन मनन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तभी वो ज्ञान हमारा अपना होता है।
तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है बल्कि एक बेहतर, सफल और आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रैक्टिकल उपकरण है।
और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों उपकरण, स्वाध्याय और सत्संग, अलग अलग नहीं है।
अच्छा।
बल्कि एक दूसरे को ताकत देते हैं। प्राचीन योगी ये बात जानते थे कि योग और आत्माध्ययन एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। महान ऋषि व्यास ने तो यहाँ तक कहा है कि योग और स्वाध्याय के संगम से ही परम सत्य का प्रकाश होता है।
एक के बिना दूसरा अधूरा है।
हाँ।
तो यहाँ से हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार उठता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार स्वाध्याय के बिना कोई भी अपने लक्ष्य से भटक सकता है। आज की इस तेज रफ्तार और बाहरी प्रभावों से भरी दुनिया में, जहाँ हमारा ध्यान 100 अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ है, हम अपने आत्मनिरीक्षण के लिए रोज थोड़ा समय कैसे निकाल सकते हैं?
ये आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम हर रोज बस कुछ पल भी अपने भीतर झांकने, अपने विचारों और कर्मों का विश्लेषण करने में सफल हो जाएं,
तो ये छोटा सा बदलाव हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कितनी बड़ी सकारात्मक क्रांति ला सकता है।
बिल्कुल, इस प्रश्न के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। विचार जरूर कीजिएगा।